ओपनिंग नरेशन मानक ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञानोगोष्ठी दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अंग्रेज दार्शनिक के विचारों की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनकी सोच ने हमारी आज की दुनिया को, मतलब खासकर लोकतंत्र और व्यक्तिगत आज़ादी की समझ को गढ़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जॉन लॉक।
हाँ बिल्कुल, 1632 से 1704 तक उनका जीवन काल रहा और जॉन लॉक को यूं ही नहीं मतलब उदारवाद का पिता कहा जाता है। उनके विचार वो सिर्फ उनके समय के लिए ही नहीं बल्कि आज भी। आप देखें, जब हम सरकार के काम या इंसान के अधिकारों या फिर ज्ञान की प्रकृति पर भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉक की आवाज़ सुनाई देती है।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि लॉक असल में थे कौन, किस तरह का वो उथल पुथल भरा दौर था जिसने उनके विचारों को शायद दिशा दी, और उनके कौन से सिद्धांत, जैसे वो प्राकृतिक अधिकार वाली बात या सामाजिक अनुबंध या फिर वो मन की कोरी स्लेट वाली थ्योरी, आज भी क्यों इतने मायने रखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर चलिए एक अच्छी बातचीत करते हैं इस पर।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस माहौल से, उस समय से जिसमें लॉक जी रहे थे। 17वीं सदी का इंग्लैंड, आप सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा। एक के बाद एक राजनीतिक भूचाल आ रहे थे। पहले तो वो अंग्रेजी गृहयुद्ध हुआ।
हाँ, वो 1642 से 1651 वाला।
वही, फिर राजा चार्ल्स प्रथम की फांसी, ओलिवर क्रॉमवेल का शासन, फिर राजशाही वापस आई 1660 में, और उसके बाद 1688 की वो गौरवशाली क्रांति। ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, ये समाज की पूरी बुनियाद को हिला रही थी।
हाँ, मतलब ये सवाल उठ रहे होंगे कि भाई सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, राजा का हक कहाँ तक है, धर्म का क्या रोल रहेगा समाज में, और व्यक्ति आम इंसान की क्या जगह है इस सब में। लगता है जैसे विचारों का भी एक महासंग्राम चल रहा था।
बिल्कुल सही कहा आपने, विचारों का महासंग्राम। और देखिए, इसी माहौल में एक और क्रांति भी अंदर ही अंदर पक रही थी, वो थी वैज्ञानिक क्रांति। न्यूटन जैसे लोग, जो बाद में लॉक के दोस्त भी बने।
अच्छा, न्यूटन उनके दोस्त थे।
हाँ, न्यूटन, रॉबर्ट बॉयल, ये सब लोग दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई सिर्फ सुनी सुनाई बातों या पुरानी किताबी मान्यताओं पर मत जाओ, देखो, परखो, तर्क करो, अनुभव पर भरोसा करो।
जी,
फ्रांसिस बेकन का जो अनुभववाद था और दूसरी तरफ रेने देकार्त का बुद्धिवाद, इन सब के बीच एक बिल्कुल नया बौद्धिक माहौल तैयार हो रहा था।
तो एक तरफ राजनीति में उथल पुथल, दूसरी तरफ ज्ञान की दुनिया में नए विचार। इसी पृष्ठभूमि में जॉन लॉक का जन्म हुआ 1632 में समरसेट में। परिवार उनका प्यूरिटन था और पिता वकील थे, छोटे जमींदार भी।
जी, उनकी शुरुआती पढ़ाई वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई और फिर वो गए क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। वहाँ उन्होंने पारंपरिक विषय पढ़े, क्लासिक्स, तर्कशास्त्र, नैतिक दर्शन वगैरह, लेकिन सुनने में आता है कि वो उस पुराने मध्ययुगीन पाठ्यक्रम से कुछ खास खुश नहीं थे। उनकी दिलचस्पी वो असल में चिकित्सा और इस नए प्रयोगात्मक दर्शन में ज़्यादा थी।
चिकित्सा में?
ये दिलचस्प है।
हाँ,
और वो बाद में कुशल चिकित्सक बने भी। एक किस्सा भी है कि उन्होंने अपने संरक्षक थे लॉर्ड शाफ्ट्सबरी, उनके पेट में एक सिस्ट था, उसका एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया था। उसमें पानी निकालने के लिए कोई चांदी की ट्यूब भी लगाई थी।
अरे वाह, तो वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे मतलब, और ये लॉर्ड शाफ्ट्सबरी से उनकी मुलाकात, ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ रही होगी, है ना?
यकीनन यकीनन, 1666 या 67 के आसपास की बात है। वो शाफ्ट्सबरी के निजी डॉक्टर बने, लेकिन जल्दी ही वो सिर्फ डॉक्टर नहीं रहे, उनके सबसे करीबी सलाहकार और राजनीतिक साथी भी बन गए, और इसी वजह से वो सीधे इंग्लैंड की राजनीति और जो बौद्धिक दुनिया थी उसके एकदम केंद्र में आ गए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था।
क्या मतलब?
मतलब ये कि जब शाफ्ट्सबरी राजा के खिलाफ साजिशों में फंसे तो उसकी आंच लॉक तक भी पहुंची।
अच्छा, और इसी वजह से उनको वो देश छोड़कर जाना पड़ा। 1683 से 89 तक वो नीदरलैंड में रहे शायद।
जी हाँ बिल्कुल, उन्हें वहां छिपकर रहना पड़ा, यहां तक कि उन्होंने उस दौरान नकली नाम भी इस्तेमाल किए, जैसे डॉक्टर वैंडर लिंडन। लेकिन देखिए, ये निर्वासन का जो समय था वो उनके लिखने पढ़ने के लिए बहुत बहुत उर्वर साबित हुआ। उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी दौरान लिखे या फिर उनको पूरा किया। फिर 1689 में जब इंग्लैंड में वो गौरवशाली क्रांति हुई, राजा जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया, तब वो वापस लौटे।
तो जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा उनका। डॉक्टर, दार्शनिक, राजनीतिक सलाहकार, बाद में सरकारी अधिकारी भी रहे वो, बोर्ड ऑफ ट्रेड में। खैर, अब आते हैं उनके उन विचारों पर जिन्होंने सच में दुनिया पर गहरा असर डाला। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। उनकी वो मशहूर किताब है एन एसी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव समझ पर निबंध। क्या कहा है उसमें उन्होंने?
तो देखिए, ये किताब ज्ञान मीमांसा में, मतलब ज्ञान के सिद्धांत में, एक मील का पत्थर मानी जाती है। लॉक ने इसने कहा कि हमारा जो मन है वो जन्म के समय एक कोरी स्लेट, या कह लें खाली कागज, टाबुला रैसा जैसा होता है, बिल्कुल साफ। कोई भी विचार या सिद्धांत जन्म से हमारे दिमाग में पहले से मौजूद नहीं होता,
कोई भी नहीं,
कोई भी नहीं। जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब या तो हमारी इंद्रियों के अनुभव से आता है, मतलब देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर, या फिर उन अनुभवों पर हमारा मन जो सोच विचार करता है, जो चिंतन करता है, उससे आता है। उन्होंने जन्मजात विचारों के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया।
ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात रही होगी, क्योंकि तब तो यही माना जाता था ना कि कुछ विचार तो ईश्वर या प्रकृति हमारे अंदर डालकर भेजते हैं।
बिल्कुल।
और लॉक कह रहे थे कि नहीं जी, सब कुछ अनुभव से सीखा जाता है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सबकी शुरुआत तो एक ही खाली स्लेट से हो रही है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये सिर्फ ज्ञान का सिद्धांत नहीं था, ये इंसानी बराबरी का एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत शक्तिशाली दावा भी था। इसने उस विचार पर सीधा हमला किया कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं। यही है अनुभववाद की असली बुनियाद।
कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं उनके दूसरे बड़े धमाके की, सरकार और अधिकारों पर उनके विचार। ये उनकी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार पर दो ग्रंथ में मिलते हैं। ये किताब तो शायद और भी ज्यादा विस्फोटक थी।
अरे, इतनी विस्फोटक कि लॉक ने इसे 1689 में बिना अपना नाम दिए छपवाया, और जिंदगी भर वो मानते ही नहीं थे कि ये उन्होंने लिखी है। सिर्फ अपनी वसीयत में जाकर उन्होंने ये राज खोला। इस किताब में उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही। पहली, उन्होंने राजाओं के दैवीय अधिकार, वो जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का सिद्धांत था, उसको पूरी तरह से नकार दिया।
हाँ, वो वाला सिद्धांत कि राजा को तो भई शासन करने का हक सीधे ईश्वर से मिला है और प्रजा का काम है बस चुपचाप आज्ञा मानना।
हाँ, लॉक ने कहा यह सब बकवास है। सरकार की असली बुनियाद ईश्वर की मर्जी नहीं बल्कि लोगों की सहमति है। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते जन्म से ही कुछ अधिकार मिलते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
यहाँ संपत्ति का मतलब क्या सिर्फ जमीन जायदाद पैसे वैसे से है?
नहीं नहीं ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लॉक के लिए संपत्ति का अर्थ बहुत व्यापक था। इसमें सिर्फ बाहरी चीजें जैसे जमीन या सामान ही नहीं, बल्कि हमारा अपना शरीर, हमारा जीवन, हमारी मेहनत से जो हम करते हैं और हमारी स्वतंत्रता, ये सब हमारी निजी संपत्ति हैं। इन पर किसी और का हक नहीं हो सकता। और ये अधिकार हमें कोई सरकार या राजा नहीं दे रहा है, ये तो हमें प्रकृति से मिले हैं, सरकार बनने से भी पहले से हमारे पास हैं।
अच्छा, तो फिर सरकार क्यों चाहिए, उसका काम क्या है?
लॉक के अनुसार सरकार का एकमात्र असली उद्देश्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की हिफाजत करना है। लोग आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं जिसे सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और सरकार बनाते इसलिए हैं ताकि उनकी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित रह सके। तो सरकार जो है वो लोगों की सेवक है, मालिक नहीं।
और अगर सरकार ही इन अधिकारों को छीनने लगे तो, मतलब अगर वो अत्याचारी बन जाए?
तो ये कहें कि लोगों को पूरा हक है कि वो ऐसी सरकार को हटा दे, उसके खिलाफ क्रांति कर दे। अब सोचिए, ये उस समय के हिसाब से कितना रैडिकल, कितना क्रांतिकारी विचार था। ये थॉमस हॉब्स जैसे दूसरे विचारकों से बिल्कुल अलग था। हॉब्स मानते थे कि भाई अराजकता से बचने के लिए तो एक बहुत शक्तिशाली, लगभग असीमित अधिकार वाले शासक के नीचे रहना ही ठीक है।
राइट।
लेकिन लॉक का नागरिक ज्यादा समझदार है, तर्क करने वाला है और अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग है।
तो लॉक ने पहले जान की नींव को हिलाया, फिर सरकार की नींव को, और धर्म और राज्य के रिश्ते पर भी उनके कुछ विचार थे। उनकी एक रचना है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सहिष्णुता पर एक पत्र।
हाँ, वो भी 1689 में ही आई। कमाल का साल था वो उनके लिए। इसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई चर्च और राज्य को अलग अलग रहना चाहिए। किसका क्या धर्म है ये उसके अपने विवेक, उसकी अपनी अंतरात्मा का मामला है। सरकार का काम दुनियावी मामलों को देखना है, लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है, ना कि ये तय करना कि कौन सा धर्म सही है या किसी पर कोई खास मजहब थोपना। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की जबरदस्त वकालत की।
लेकिन उनकी ये सहिष्णुता क्या सबके लिए थी? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें कुछ कुछ सीमाएं भी थीं।
हाँ, ये उनकी सोच का एक जटिल और थोड़ा विवादास्पद पहलू भी है। उनकी सहिष्णुता नास्तिकों तक नहीं जाती थी। उनका मानना था कि जो ईश्वर में ही यकीन नहीं रखते, उन पर भरोसा कैसे किया जाए कि वो अपनी बात या कसम निभाएंगे। और रोमन कैथोलिकों को भी उन्होंने थोड़ी शक की नज़र से देखा। उनको लगता था कि उनकी वफादारी अपने देश की बजाय पोप के प्रति ज़्यादा हो सकती है, जो एक विदेशी ताकत थे। तो हाँ, उनकी सहिष्णुता उस समय के हिसाब से तो काफी आगे थी, पर आज के मानकों पर शायद पूरी तरह खरी न उतरे।
ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, इन बड़े बड़े विचारों के अलावा उन्होंने शिक्षा पर भी कुछ लिखा था क्या?
बिल्कुल, उनकी एक किताब है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जो 1693 में आई, वो भी काफी प्रभावशाली रही। उसमें उन्होंने रटन विद्या के बजाय चरित्र निर्माण पर जोर दिया, व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया, और इस बात पर कि बच्चे के विकास में उसके आसपास के माहौल का कितना महत्व होता है। ये भी उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक विचार थे।
अगर हम लॉक की तुलना करें उनके समय के दूसरे बड़े विचारकों से, जैसे वो बुद्धिवाद के बड़े पैरोकार थे रेने डकार्त, तो मुख्य अंतर कहाँ दिखता है?
देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो ज्ञान कैसे मिलता है, इसी सवाल पर था। डकार्त मानते थे कि कुछ बुनियादी विचार, जैसे वो उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कोजितो एर्गो सुम, ये जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं, और सच्चा ज्ञान तर्क और बुद्धि से मिलता है। लॉक ने इसका सीधा खंडन किया। उन्होंने कहा, नहीं, दिमाग तो कोरी स्लेट है, सारा का सारा ज्ञान अनुभव से ही आता है। ये अनुभववाद बनाम बुद्धिवाद की एक क्लासिक बहस बन गई।
और इन सभी विचारों का असर, उनकी विरासत क्या रही, कहां कहां उनका प्रभाव दिखता है?
असर तो जबरदस्त और बहुत दूर तक गया। अमरीकी क्रांति पर तो उनका सीधा प्रभाव माना जाता है। वो जो थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी, उसमें जो शब्द हैं, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो सीधे सीधे लॉक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से प्रेरित लगते हैं।
हाँ, ये तो बहुत मिलता जुलता है।
बिल्कुल, और अमेरिकी संविधान, उनका बिल ऑफ राइट्स, उसमें लॉक के सीमित सरकार, अधिकारों की रक्षा और सहमति पर आधारित शासन के सिद्धांत साफ झलकते हैं।
और अमेरिका के बाहर भी?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति के विचारकों ने भी उनसे बहुत प्रेरणा ली। वो पूरे ज्ञानोदय, मतलब एनलाइटनमेंट के दौर के लिए एक तरह से प्रकाश स्तंभ जैसे थे। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े विचारक उनसे प्रभावित थे। आज हम जिस शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म और संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उसकी नींव में कहीं ना कहीं लॉक के विचार हैं। वो चर्च और राज्य का अलगाव का सिद्धांत हो, या मानव अधिकारों की आधुनिक अवधारणा, या फिर प्रगतिशील शिक्षा, इन सब पर उनकी गहरी छाप है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो शायद उनके विचारों का निचोड़ पेश करते हैं। एक तो आपने बताया ही कि सरकार का कोई अन्य उद्देश्य संपत्ति के संरक्षण के अलावा नहीं है।
हाँ, ये उनके दूसरे ग्रंथ से है, और ये सरकार के सीमित रोल को दिखाता है, यानी लोगों के जो व्यापक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, उनकी रक्षा करना। एक और बहुत प्रसिद्ध कथन है उनके मानव समझ पर निबंध से, यहाँ किसी भी मनुष्य का ज्ञान उसके अनुभव से आगे नहीं बढ़ सकता। ये उनके अनुभववाद का सार है, मूल मंत्र है।
एक और है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, प्रकृति की अवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति का एक नियम है कि सभी समान और स्वतंत्र होने के नाते किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
हाँ, ये भी दूसरे ग्रंथ से है, और ये दिखाता है कि लॉक के अनुसार नैतिक नियम सरकार से पहले भी मौजूद हैं, जो तर्क पर आधारित हैं। यही प्राकृतिक अधिकारों का नैतिक आधार है। और एक आखिरी, जो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है, जहाँ कानून समाप्त होता है वहाँ अत्याचार शुरू होता है। मतलब कानून का शासन कितना जरूरी है मनमानी सत्ता से बचने के लिए।
लेकिन इतने महान विचारों के बावजूद लॉक का जीवन और उनकी सोच कुछ गंभीर सवालों और विरोधाभासों से भी अछूती नहीं रही है। शायद सबसे बड़ा सवाल दास प्रथा को लेकर उठता है।
हाँ, ये उनकी विरासत का सबसे मुश्किल और तकलीफदेह पहलू है। देखिए, एक तरफ तो जीवन और स्वतंत्रता के सार्वभौमिक या मतलब यूनिवर्सल अधिकारों की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद रॉयल अफ्रीकन कंपनी में निवेशक थे। ये वो कंपनी थी जो अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर बेचने का घिनौना व्यापार करती थी।
क्या वो खुद निवेशक थे इसमें?
हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में कैरोलिना प्रांत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने में भी मदद की थी, जिसमें बाकायदा वंशानुगत दास्ता को कानूनी मान्यता दी गई थी।
ये तो बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। ये समझना वाकई मुश्किल है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में स्वतंत्रता का इतना बड़ा हिमायती हो और दास प्रथा में इस तरह शामिल भी हो।
ये एक बहुत जटिल सवाल है, और इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि शायद वो अपने समय की जो गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं थीं उनसे पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाए, या फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों को बहुत चुनिंदा तरीके से लागू किया। उनकी वो सीमित सहिष्णुता वाली बात भी नास्तिकों और कैथोलिकों को लेकर इसी जटिलता का हिस्सा है।
और उनके संपत्ति के सिद्धांत की भी कुछ आलोचना होती है ना?
हाँ, होती है। आलोचक कहते हैं कि उनका वो विचार कि जमीन या प्राकृतिक संसाधनों पर निजी हक तब बनता है जब कोई उसमें अपना श्रम मिलाता है, इस तर्क का इस्तेमाल बाद में उपनिवेशवाद के दौरान जो मूल निवासी थे उनको उनकी जमीनों से बेदखल करने को सही ठहराने के लिए किया गया, और इससे अत्यधिक आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने संपत्ति के स्वामित्व को पूर्ण नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों का आधार भी माना था, जिससे एक तरह से गरीबों और भूमिहीनों को व्यवस्था से बाहर रखने का रास्ता खुला।
तो कुल मिलाकर लॉक एक काफी पेचीदा शख्सियत थे, एक तरफ क्रांतिकारी विचारक, दूसरी तरफ अपने समय के पूर्वाग्रहों और विरोधाभासों से घिरे हुए।
बिल्कुल, उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि महान से महान विचारक भी आखिरकार अपने समय और समाज की ही उपज होते हैं। लेकिन इन तमाम जटिलताओं और विरोधाभासों के बावजूद उनके जो मूल विचार हैं कि हर इंसान की गरिमा है, उसका महत्व है, कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, कि ज्ञान अनुभव से आता है, इन विचारों ने दुनिया को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो उदारवाद के, लोकतंत्र की हमारी आधुनिक समझ के एक अनिवार्य स्तंभ हैं। उनके बिना शायद हमारी आज की दुनिया बहुत अलग होती।
और वो निजी लाइब्रेरी वाली बात भी दिलचस्प है, 3000 से ज्यादा किताबें।
हाँ, ये उनके गहरे अध्ययन और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को दिखाता है। और ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनका कोई अपना परिवार नहीं था। लगता है उनका पूरा जीवन विचारों, राजनीति और चिकित्सा के लिए ही समर्पित रहा।
इतिहास के एक पन्ने को पलटना नहीं है, बल्कि ये आज की राजनीति, समाज और हमारे अपने अधिकारों की जड़ों को समझना है। उनकी सोच ने वाकई दुनिया को देखने का एक नया चश्मा दिया।
बिल्कुल सही कहा, और उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारी बहसों में, हमारे कानूनों में, और हमारे इस बुनियादी विश्वास में कि हम सिर्फ किसी राजा या शासक की प्रजा नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिक हैं।
चलिए, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। लॉक ने कहा था कि मन एक कोरी स्लेट है, और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की। आज के दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI या फिर डिजिटल पहचान जैसी नई चीजों पर बात कर रहे हैं, तो क्या लॉक के ये पुराने विचार यहाँ भी कुछ रोशनी डाल सकते हैं? क्या AI की भी कोई स्लेट है जिसे भरा जा रहा है? क्या हमारी डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों की प्रकृति बदल रही है? लगता है लॉक हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं।
क्लोजिंग नरेशन मानक। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांशांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।